कल्याण सिंह जी ने मुंह बनाते हुए कहा, और तुम्हें इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की खुद भी बोल सकती है। जानवी को भी कल्याण सिंह जी का गुस्सा देखकर डर लग रहा था। वो खुद सहम चुकी थी। उसने माही का हाथ कसकर पकड़ रखा था। अमर और दीक्षांत भी सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। उन्होंने भी त्रिशा को देखा, पर वे दोनों पहले से सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्हें इतनी हैरानी नहीं हुई। वे नीचे आए और अमर ने एक सर्वेंट को देखते हुए कहा, जाओ इसके लिए कमरा तैयार करो। रजत जी ने अमर की तरफ देखकर हैरानी से कहा, मतलब तुम्हें भी इसका पता था? सिर्फ हमें नहीं पता है? क्या तुम सब इतने बड़े हो चुके हो कि हमें कोई बात बताते ही नहीं हो? हमें बताने की जरूरत ही नहीं समझते हो? दीक्षांत ने रजत जी को कंधों से पकड़ते हुए कहा, अरे डैड, आप फालतू में इतना गुस्सा कर रहे हो। इतनी छोटी सी बात थी कि ये किसी से प्यार करती थी, अब उसे जिससे प्यार करती थी उसने भी धोखा दे दिया है, तो ये वापस आ गई है। इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है? लव मैरिज के बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है ना? रजत जी ने उसके हाथ झटकते हुए कहा, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, तुम तीनों की मिली भगत है ये सब कुछ, जब देखो एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हो। दीक्षांत ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, हे, अब हम एक दूसरे को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? वैसे भी भाभी तो इतनी छोटी सी है, उसे खुद डर लगता है, वो किसी को कैसे बचाएगी? और उनके अलावा तो कोई है ही नहीं जो हमारी साइड ले सके। दीक्षांत के मुंह से भाभी सुनकर त्रिशा को यकीन हो चुका था कि जानवी की शादी अमर से हो चुकी है, और उसकी रही सही उम्मीद भी टूट गई। उसने खिन्नता भरी नज़रों से जानवी को देखा। माही हैरानी से दीक्षांत की तरफ देख रही थी। उसकी ये चल साइड सिर्फ अपने घर वालों के लिए थी, ये सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ अपनों के लिए था। उसके साथ वो कितनी बेरुखी से पेश आता है। ऐसा लगता है उसके सामने जो दीक्षांत रहता है वो कोई और है, और अपने घर वालों के सामने जो दीक्षांत रहता है वो कोई और है। अमर जानवी के करीब जाकर उसे कमर से पकड़ते हुए खुद से चिपका लिया, और उसका सर अपने सीने पर रखकर उसके बाल सहलाने लगा। जानवी ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, पर अमर ने उसे हिलने भी नहीं दिया, और कल्याण सिंह जी की तरफ देखकर गुस्से में बोला, कल्याण सिंह जी, अपना गुस्सा मेरी बीवी के सामने मत निकाला करें, उसे डर लगता है आपकी डरावनी आवाज़ से। कल्याण सिंह जी ने गुस्से से अमर को घूरा और फिर जानवी की तरफ देखा, जो अमर के बाहों के घेरे से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी। कल्याण सिंह जी का स्वर खुद ब खुद सॉफ्ट हो गया। उन्होंने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, बेटा आपको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारे घर की लक्ष्मी हो, आपका अनादर कैसे कर सकते हैं। जानवी ने अब स्ट्रगल करना बंद कर दिया और अमर के सीने से अपना चेहरा निकालकर कल्याण सिंह की तरफ देखकर थोड़े एक्साइटमेंट में बोली, सच कल्याण सिंह जी? सॉरी, आई मीन दादाजी। जानवी ने फ्लो में वो बोल दिया जो यहाँ सब लोग बोलते हैं, और सबको एक साथ हंसी आ गई। वहीं माही तो दीक्षांत से बचने की तरकीबें सोच रही थी। अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने धीरे से कहा, त्रिशा, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम एक कमरे में रह सकते हैं? मुझे अकेले डर लगता है। त्रिशा ने अब माही की तरफ देखा, जिस पर इतनी देर से उसका ध्यान नहीं गया था। त्रिशा ने अपने मन में कहा, जानवी की फ्रेंड इसके साथ यहाँ क्या कर रही है? उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे और उसे अब ये सब जल्द से जल्द जानना था। शायद माही के साथ रहेगी तो उसे जल्दी पता चल जाएगा। त्रिशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और माही के चेहरे पर सुकून भरी छोटी सी मासूम मुस्कान खिल गई, जिसे देख दीक्षांत ने अपने जबड़े कस लिए और अपने मन में कहा, जो मर्जी है करो, जितनी कोशिशें करनी है उतनी करो, मुझसे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुछ देर बाद सबने एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया। समर्थ ने त्रिशा को उसका कमरा दिखाते हुए कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बस एक कॉल और मैं यहीं हूँ बगल वाले कमरे में, कोई भी परेशानी हो मुझसे पूछ सकती हो, ओके? त्रिशा ने बोरियत से समर्थ को देखते हुए कहा, अब हो गया तुम्हारा, तो निकलो यहाँ से। माही जो उनके पीछे पीछे आई थी, त्रिशा की ये टोन सुनकर उसके चेहरे पर घबराहट आ गई, क्योंकि उसे यहाँ रहने वाले हर इंसान से डर लगने लगा था। तो त्रिशा समर्थ से ऐसे कैसे बात कर सकती है? पर उसकी आंखों में हैरानी तब आ गई जब समर्थ ने बिना किसी उल्टे जवाब के धीरे से बस हाँ में सर हिलाया और रूम से बाहर आ गया।